राजकोट भदपुरी नगरी है,
बेहद बापू समान पुकारी। बेहद बापू कौन है? मेरा बाबा, मीठा बाबा। सरल स्वभावी और अनुरागी, सदाचारी मनोहारी। मधुबन मौन भट्टी में आए, लगी है एक लगन। मेरा बाबा मीठा बाबा, गाए दिल की धड़कन। स्वागत है अभिनंदन आपका, स्वागत अभिनंदन। अभिवादन अभिनंदन करता ये सारा आलम।
अभिवादन अभिनंदन करता ये सारा आलम। अभिवादन अभिनंदन करता ये सारा आलम। अवधपुरी गुनगुना रहा है खुशियों के सरगम। वक्त वत्सलम बाबा करते स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन मधुबन वाले बाबा करते स्वागत अभिनंदन। स्वागत अभिनंदन
ठिकाना बाबा ने बुलाया है।
खुशियों का नहीं है ठिकाना बाबा ने बुलाया है।
मीठे वतन से बाबा ने स्नेह पुष्प बरसाया है।
मीठे वतन से बाबा ने स्नेह पुष्प बरसाया है।
बाहर बाबा बाहर दीदिया गाए दिल की धड़कन।
गाए दिल की धड़कन अभिवादन अभिनंदन करता ये सारा आलम। ये सारा आलम
अवधपुरी है बरसे के अधिकारी।
बाबा कहते अवधपुरी है बरसे के अधिकारी।
रेखा बहना अंतर्मुखी हो के करती तैयारी।
रेखा बहना अंतर्मुखी हो के करती तैयारी। खींच रहे हैं भाग्य की रेखा बाबा समान हरदम। बाबा समान हरदम अभिवादन अभिनंदन करता ये सारा आलम। ये सारा आलम
समय की यही पुकार है।
भट्टी करे शक्ति भरे समय की यही पुकार है।
हाहाकार के बाद फिर तो होना जय जयकार है।
हाहाकार के बाद फिर तो होना जय जयकार है।
साक्षात्कार हो जाए मनसा सेवा करदम,
मनसा सेवा हरदम।
अभिवादन अभिनंदन करता ये सारा आलम,
सभी दीदी और सिंधु दीदी भी करते हैं अभिनंदन,
करते हैं अभिनंदन,
करते हैं अभिनंदन,
करते हैं अभिनंदन, करते हैं अभिनंदन,
करते मधुबन वाले आप सबका करते हैं अभिनंदन,
करते हैं अभिनंदन,
करते हैं अभिनंदन।
हम सबका भव्य अभिनंदन करने वाले इन त्रिमूर्ति भाइयों का भी अभिनंदन है, शुक्रिया है। तो जैसे कहा अभी शशि बहन आएंगे हम सबके बीच में और शुभकामनाएं देते हुए स्वागत टोली भी आपको देंगे और फिर भोजन करके थोड़ा समय रिलैक्स रह के समय पर बाबा को गुड नाइट करके विश्राम के लिए जाना है और सुबह 4 बजे इसी हॉल में हाजिर रहना है। पावरफुल क्वालिटी वाला अमृत वेला योग करेंगे और विशेष टीचर बहनों के लिए निवेदन है कि जब जाने के लिए रास्ते का भोजन चाहिए होता है तो टीचर बहनें अपने अपने ग्रुप के लिए जाने से एक दिन पहले अवश्य चिटकी डाल देंगे। तो हम सबके बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी पहुंच चुके हैं, एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, बहुत ही जिम्मेवारियां हैं कंधों पर, लेकिन बावजूद इसके बहुत लाइट रहते हैं, बहुत बिजी रहते हुए भी बहुत इजी रहते हैं और समय निकालकर भट्टी वालों को बाबा की पालना देने के लिए अवश्य पहुंचते हैं। तो आज भी बाबा से जो पालना ली है वो सबकी भासना देते हुए, भट्टी की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए स्वागत टोली देकर आपका मुख भी मीठा कराएंगे। तो सुनते हैं दीदी जी से।
ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि प्यारे प्यारे बाप दादा की श्रेष्ठ चरित्र भूमि, दादियों की विशेष तपस्वी भूमि और हम सबका अपने ही घर में अपने ही बाबा से, अपने ही दादियों से, अपने ही भाई बहनों के द्वारा, अपने ही राजकोट के भाई बहनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो राजकोट तो है अपना, चाहे कोई कहे या ना कहे, क्योंकि हमें याद आता है कि जब भी यहाँ मधुबन में सेवाएं होती थी तो बड़ी दादी सरला दीदी को बोलती थी, सरला यहाँ पर, सरला दीदी को सरला दादी बोलती थी। दादी कहती थी यहाँ पर ये प्रोग्राम है, आज ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, आज ये होने वाला है। तो सरला दीदी कहती हाँ दादी जो कहेंगे वो सब करेंगे। तो सरला दीदी चारों तरफ से, अहमदाबाद से, राजकोट से और भी सभी सेंटर से भाई बहनों को यहाँ भेज देती थी। और राजकोट की माताएं तो यहाँ ढेर आती रहती है, सेवा करती रहती है, आती रहती है ना, तो हम सब आपको मिलते भी रहते हैं और जब देखो तो पूछेंगे कहेंगे राजकोट से हैं। तो राजकोट वाले कितने लक्की हैं, है ना लक्की, बजाओ अपने लिए ताली। राजकोट वाले लक्की हैं, किन किन बातों में लक्की हैं, एक तो बाबा आपको बहुत प्यार करता, दूसरा बड़ी दादियों ने आपको इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, अधिकार से आपके ऊपर अधिकार रखती थी और आप सबको यहाँ मधुबन में बुलाती थी, और अभी भी आप सबके ऊपर इतना अधिकार है कि जब कहेंगे राजकोट से आ जाएंगे, अरे आ जाएंगे राजकोट से, अभी हम भी देखते हैं यहाँ राजकोट के हैं, यहाँ राजकोट के हैं। तो फिर चौथी बात क्या है राजकोट? राजकोट का अर्थ क्या है? हैं? राजाई। अच्छा, राजाई के स्थान पर रहने, कोर्ट में है, कोर्ट नहीं, कोर्ट याद होता है ना, आंगन। तो आप कौन हो गए? राजाएं, महाराजाएं, विश्व महाराजाएं या प्रिंस और प्रिंसेस हैं? तो आपको तो पहले से ही टाइटल मिला हुआ है, और बाबा तो कहते हैं प्रिंस प्रिंसेस बनना है, राजा रानी बनना है, विश्व महाराजन बनना है, वो तो पहले बनो सो बनो, पहले बाबा ने ऐसे स्थान पर बिठा दिया। फिर बाबा कहते विश्व महाराजन कौन बन सकेंगे? उसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो बच्चे बाप के दिल तख्त नशीन हैं, दिल तख्त नशीन भी तभी बन सकते हैं जिसके लिए बाबा ने कहा था तीन सर्टिफिकेट लेने हैं। पहला सर्टिफिकेट है अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने आप किस प्रकार से पुरुषार्थ कर रहे हैं वो तो मैं देखती हूँ। आप सभी सदा हंसते खेलते अथक सेवादारी, आपको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आपका पुरुषार्थ कैसे है, जरूरत पूछने की नहीं ना, तो पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है। और दूसरा, आपकी सेवाओं को देख करके सब लोग बहुत खुश होते हैं, सब सेटिस्फाई हैं, तो सभी आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। अब तीसरा, जो बाबा से सर्टिफिकेट लेना है वो खुद आपको अपना चेक करना है ना। तो जब ये तीन सर्टिफिकेट ले लेंगे तो बाप के दिल तख्त नशीन अथवा विश्व महाराजन, विश्व महारानी बनेंगे। अच्छा, बाबा ने कहा कि विश्व महाराजन तो सबको बनना, सब बनेंगे ना, जो बनेंगे हाथ खड़ा करो। फिर सारे राजाएं बन जाएंगे तो प्रजा कौन बनेगा? हैं? जब राजा तो एक ही होगा ना, तो प्रजा कौन बनेगा? हैं? लेकिन बाबा ने लक्ष्य तो वही रखा है ना। लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात भी मुरली के अंदर कही थी कि मैं माला बनाते हैं, बाबा हमेशा कहते थे बाबा माला बनाते हैं, आज माला बनाई है, और कभी पहला जिसका पहला नंबर है थोड़े दिन के बाद फिर माला बनाते हैं, उसका आठवां नंबर आ जाता है, फिर 16 नंबर आ जाता है, फिर बाबा ने माला बनाना बंद कर दिया। फिर कई कई बच्चों को ये हो गया माला तो बन गई है, अब हम क्या करें? लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया, माला भल बन गई है लेकिन माला के साथ लड़ियाँ, लटकने वाली या गोल गोल, कौन सी पहनोगे? माताएं तो लटकने वाली नहीं, गोल गोल है, एक माला के आगे दूसरी तीसरी तीसरी, वो कितना सुंदर भरा हुआ हो जाता है। और भाई कहेंगे लटकने वाली माला का है, ऐसा होगा क्या? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं अभी तक सीट फिक्स नहीं हुई, अभी तक रेस चल रही है, जिसको दौड़ना है दौड़े, जैसे रेस में होता है ना दौड़ने वाले, कोई रेस तो सब दौड़ सकते हैं, जो रेस में दौड़ने वाले होते हैं उनका क्या होता है, ट्रैक होता है, अगर वो ट्रैक से बाहर कोई दौड़ रहा है कितना नंबर पहला ले जाए लेकिन उसको नंबर नहीं मिलेगा, जो ट्रैक के अंदर है जिसको नंबर मिला हुआ है, जो सिस्टम से दौड़ता है वो जाकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड बनता है। तो इसी तरह से बाबा कहते ब्राह्मण परिवार का भी कौन सा ट्रैक है, हमारे जीवन की ईश्वरीय मर्यादा है, जितना हम ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करते हैं उस ट्रैक के अंदर है। देखा ना कभी दौड़ते हुए लोगों को देखा है, खिलाड़ियों को, उनके लिए लाइन लगी होती है, इधर लाइन लगी इधर लाइन लगी, अगर वो लाइन से बाहर दौड़ेगा तो वो लाइन से बाहर दौड़ करके भी कितना भी फास्ट चला जाए लेकिन उसका नंबर नहीं आएगा। तो बाबा कहते जो अपने जीवन की मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं को पालन न करते हुए कितना भी अच्छा पुरुषार्थ करेगा लेकिन उसको नंबर तो नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों के लिए बहुत सुंदर प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे नियम बनाए हैं कि नियमों का भी पालन करें और बाबा बहुत प्यार करते थे बच्चों को, क्योंकि आपने तो भारती दीदी से बहुत सी बातें सुनी होंगी, क्योंकि भारती दीदी ने तो कितनी भाग्यशाली है, साकार मम्मा बाबा की पालना ली, और आप कितने भाग्यशाली हैं जो आपको भी ऐसी दीदी मिली। और भारती दीदी का दिल तो बड़ा विशाल है, हैं? बाबा के टाइम तरह से उनका भी दिल विशाल है, ये भी करो ये भी करो वो भी करो वो भी करो, हर काम में विशाल है। बाबा मम्मा की पालना ली है, अथक सेवाएं की हैं, और कभी भी कोई कंप्लेन नहीं, सबके लिए बहुत प्यार से सेवा करते, ऐसी दीदी किसी को मिले तो कितना बड़ा भाग्य हो सकता है ना, इतना बड़ा भाग्य। तो ये भाग्य मिला। अब फिर बाबा क्या करते थे, बाबा हमेशा बच्चों को बहुत बहुत प्यार करते थे। बाबा कहते थे क्लब के बाद मिले हैं, पूरे क्लब तो ये मिलेंगे नहीं, भल अपना पार्ट अच्छा बजाएंगे लेकिन पूरे क्लब के बाद ही मिलते हैं। तो बाबा कहते यही मेरे साधारण बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं। और दुनिया की भेंट में कहेंगे ये तो साधारण है, उनको बाबा कहते हैं मेरे होवनहार विश्व महाराजन है, और आपको देख करके कहेंगे विश्व महाराजन है, ये क्या विश्व महाराजन बनेंगे। लेकिन बाबा के सामने तो बाबा कहते हैं ये मेरे लाडले VVIP बच्चे, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई साधारण है, चाहे कोई चल सकता है चाहे कोई ज्ञान पूरा समझता है या नहीं समझता है, लेकिन एक बार कहा मेरा बाबा, बाबा शब्द कहा तो कौन बन गया, VIP बन गया। क्यों? क्योंकि बाबा उसको रिटर्न देते हैं, प्यार करते हैं। तो बाबा कहते फिर कभी कभी कई बच्चे चलते चलते बाबा को कहते बाबा ये क्या है, कब तक संगम युग चलेगा, कब तक हम चलेंगे, हमारा शरीर तो काम करता नहीं है, हमें तो अभी जल्दी जाना है। तो बाबा क्या कहते, तुम चाहते हो कि मैं जल्दी चला जाऊं, हैं? क्योंकि जाना मीन्स, तो बाबा कहते तैयार कहाँ हो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की बहुत अच्छी मीठी मीठी रूहान होती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को पूछते बताओ तुम्हारे बच्चे कब तैयार होंगे, ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार से कहते सब तैयार हो रहे हैं, हो जाएंगे। बाबा कभी ये नहीं कहते कि सुनते नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करते, ऐसा नहीं करते हैं, अपनी मन मत करते, ब्रह्मा बाबा कभी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा बहुत प्यार करते थे, यहाँ भी जब बाबा के पास आते थे ना तो बाबा बच्चों को बहुत खातरी करते थे, बहुत खातरी करते थे, कहते यही तो लाडले हैं, सतयुग में जाएंगे वहाँ थोड़ी मालूम पड़ेगा कि ये मेरे बच्चे हैं, वहाँ तो राज्य करेंगे भरपूर सुखी होंगे। लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है वो कब होती है, वो इसी समय पर होती है। गोपुर गोपियों का गायन पूछना हो तो कहाँ से पूछेंगे, हैं? कौन है गोपुर गोपियाँ, है ना? आप तो हो ही पहले से, क्योंकि रास करते हो, हैं? गुजरात वाले तो रास कर लेते हैं, इतनी सुंदर रास करते हैं, और बाबा को भी अच्छा लगता था। बाबा कहते गुजरात वाले जो हैं ये रास बहुत अच्छी करते हैं, कदम से कदम मिला के, बूढ़े भी होंगे ना, अब हमको कहेंगे करो हम तो नहीं कर सकते, आप तो वैसे ही कर लेंगे, जब गीत बजने की देर है हमारी माताएं सब खड़ी हो जाएंगे। कभी कभी माताओं पे हम हंसते हैं, भाई पर भी कहेंगे मेरी टांग नहीं चलती, मेरी टांग दुख रही है। अरे जैसे गीत बजेगा वही गरबा रास कर रहे हैं, अभी तो कहती टांग दुख रही है, उनका गरबा रास देखो तो इतना सुंदर होता है, वैसे कहते हम चल नहीं सकते हैं, गरबा रास में टांग भी चल जाती है, शरीर भी चल जाता, क्योंकि क्या है उनके हर अंग के अंदर वो प्रेम की भासना भरी हुई है। तो जहाँ गीत बजेगा कहाँ भी होंगे, कहीं भी होगा, कभी कभी हम प्रोग्राम रखते ना तुम्हारी सारी बूढ़ी माताएं रास करती गरबा, और इतना सुंदर करती, ऐसा नहीं कि वो ऐसा, उनका स्टेप भी स्टेप से मिलता है, बहुत अच्छी तरह से मिलता है, बहुत प्यार से करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक खुशी की निशानी है, इसको बाबा कहते हैं स्नेह की निशानी है, बाप की श्रीमत के कदमों पर चलने वाले की निशानी है। तो बाबा के पास जब आते थे ना, जब बुजुर्ग माताएं आती थी, तो बाबा के टाइम की बात है, हरियाणा गुड़गांव में उसमें सेंटर खुला था, तो गुड़गांव में जो माताएं निकली थी तो वो जैसे होता ना गुजरात में गांव में इतना बड़ा वो डाला होगा, है ना, उसके ऊपर चुन्नी होगी, घाघरा पहना होगा,
तो वो माताएं आती थी और हरियाणवी भाषा बोलती थी और उनको तो भाषा समझ नहीं आती थी, वो अपनी हरियाणवी भाषा में गीत गाती और बाबा बीच में, वो चारों तरफ चक्कर लगाती रहती थी, ऐसे डांस करती रहती थी। बाबा कहते देखो गोपियों का रास है, गोपियां कितने प्यार से बाबा से रास कर रही हैं। तो बाबा के पास भी जब कर्नाटक के आते थे, कर्नाटक वाले आते तो वो भाषा ही नहीं समझते। कर्नाटक वालों के टाइम पर हमें भी अनुभव बहुत अच्छे हुए। हम जब हॉल की सेटिंग करते ना, कर्नाटक वाले आते ना, हम उनको कहेंगे ना यहां से यहां हो जाओ, उसने जरा नहीं हिलना, जरा नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको बाबा के सामने बैठना है, भल वो भाषा समझ रही या नहीं समझ रही, मेरा इशारा समझ रही या नहीं समझ रही, लेकिन उसने नहीं हिलना है। फिर बाबा मुस्कुराते थे, बाबा कहते थे ये स्नेह के भूखे हैं, ये स्नेह के प्यासे हैं, तो इनके स्नेह का रिटर्न बाप इनको देता ही रहता है। भल भाषा नहीं समझती हैं, बाबा क्या बोल रहे वो नहीं समझते हैं, लेकिन जो अंदर दिल का स्नेह है उनकी आंतरिक स्थिति को बहुत मजबूत कर देता है। फिर बाबा के पास आते थे बच्चे, तो बाबा ज्ञान और योग के लिए हर एक को बिल्कुल एक्यूरेट चाहते थे। बाबा कहते थे अब सतयुग में जाकर के महाराजा महारानी बनना है, तो पहले एक्यूरेसी चाहिए ना। ढीला ढाला राजा हो तो क्या होगा है? ढीला ढाला राजा होगा तो दुश्मन वार कर लेगा, तो ढीला ढाला राजा वहां तो नहीं चल सकता है, बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। तो बाबा कहते थे ज्ञान और योग के अंदर बिल्कुल सबको परफेक्ट बनना है ना। तो परफेक्ट बनने के लिए बाबा ने हम बच्चों को तीन बातें कही हैं। अच्छा अभी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, बाबा कहते ये मेरे भाग्यशाली बच्चे हैं, सौभाग्यशाली बच्चे भी हैं और पद्मा पदम भाग्यशाली भी। अच्छा बताओ भाग्यशाली कौन है? सिर्फ एक ने हाथ खड़ा किया, ठीक है, एक उसने किया, एक मैंने किया, दो ने, ठीक है। अच्छा सौभाग्यशाली कौन है? वो सिर्फ पांच छह लोग। अच्छा और पद्मा पदम भाग्यशाली? सारे ही है। अब बताओ, अब राज तो भूल गए, अब मैं बताऊंगी राज। बताओ राज, आप सब पहले हो भाग्यशाली। जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, किसी अच्छे घर में जन्म लेगा, अडानी के घर में जन्म ले ले हैं, तो क्या कहेंगे हैं? कहेंगे पता नहीं किस जन्म का भाग्य लिया यहाँ आ गया है, क्योंकि अरबपति है ना। अभी ऐसा नहीं कि कोई लेगा, उदाहरण दिया है तो कहेंगे। लेकिन बाबा के घर में हमने जन्म नहीं लिया, बाबा ने हमको जन्म दिया, तो उससे बड़े अडानी से बड़े कौन हो गए? आप हो गए ना। तो बोलो हम आत्मा, वो अडानी है, हम आत्मा है, बोलो हम भाग्यशाली आत्मा है। बाबा ने चुना, कहाँ कहाँ से चुना, कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इतना सुंदर गुलदस्ता बनाया। तो क्या हुआ, जब बच्चा घर में जन्म लेता है, भाग्य लेकर के आता है, तो पूरे सारे रिश्तेदार इकट्ठे होकर के कहेंगे तो कितना बड़ा भाग्यशाली, ऐसे घर में जन्म लिया। लेकिन भाग्यशाली फिर जैसे बड़ा होता जाता है, उसकी पालना होती है, उसकी खातरी होती है, पढ़ने जाता है, माँ बाप उसका बहुत ध्यान रखते, इतना रॉयल्टी से पढ़ाएंगे, अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ाएंगे, ऐसे वैसे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, उसकी पालना इतनी अच्छी करेंगे। तो बाबा भी क्या करते हैं, ये मेरे सौभाग्यशाली बच्चे। बाबा कैसे पालना करते? ज्ञान रत्नों से पालना करते हैं। श्रृंगार किससे करते हैं? हीरे मोती से। कहाँ है हीरे मोती? है ना हीरे मोती, ये ज्ञान का एक एक हीरे मोती है। बाबा फिर बच्चों को टाइटल्स भी देते हैं। अरे ज्ञान है ही नहीं, बाबा ने पहले टाइटल दे देंगे। बाबा के पास आते, बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे हैं, ये मेरे नूरे रतन हैं, ये मेरे नैनों के सितारे हैं, ये फरिश्ते हैं। अरे अभी बने ही नहीं है, फरिश्ता बने ही नहीं है, बाबा ने पहले टाइटल दे दिया। तो बाबा कितना प्यार करता है, कितना लाड करता है, कितना भाग्य बनाता है। तो सौभाग्यशाली वो है जो बाप की पालना, बाप की छत्र छाया, बाप का हाथ पकड़ करके बाबा चला रहे। बाबा ही तो चला रहे ना हमको, हम तो नहीं चल रहे ना। बाबा चला रहे हैं, बाबा खातरी कर रहे हैं। अभी देखना यहाँ मधुबन में बाबा कितनी खातरी करते हैं। फिर बाबा कहते पद्मा पदम भाग्यशाली वो हैं जो बाप की श्रीमत पर चलते। मानो एक बहुत बड़े मल्टी मिलियनर का बच्चा है, बाप ने उसको प्रॉपर्टी दी बिजनेस बढ़ाने के लिए, बढ़ाने की बजाय रोज ही खत्म करता जाता है तो बाप क्या कहेगा, ये बच्चा ऐसा निकला जो मेरा सारा बिजनेस ही खाली कर दिया। तो बाप तो उस बच्चे को चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे ही आज्ञा पर चल करके बिजनेस को बढ़ाए। तो बाबा कहते पद्मा पदम भाग्यशाली वही हैं जो बाप की श्रीमत का पालन करते। फिर बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना, बाबा उनको बहुत हंसाते थे। फिर बाबा कभी कभी बच्चों के साथ खेल करते थे, कभी कभी बाबा बच्चों से के साथ बैडमिंटन खेलते थे। जब बाबा खेलते थे, बाबा तो लंबे और बाबा के अंदर दो पावर, एक अपनी पावर, एक शिव बाबा की पावर, अपनी योग की पावर। तो बाबा जब बैडमिंटन खेलते थे ना, तो बाबा का जो बैट है वो तो इतना फास्ट, और फिर बच्चे हार जाते थे तो बाबा देखते थे बच्चे तो मायूस हो रहे हैं, क्या करें। फिर बाबा कभी कभी खुद जो है ना पीछे हट जाते थे, तो फिर बच्चे कहते बाबा आज तो आप हार गए। बाबा कहते हारे नहीं, बच्चे बाप के गले का हार बन गए। तो बाबा ऐसे ऐसे बच्चों को बहलाते थे। बाबा कहते किसी भी कदम पर किसी भी हालत में ये नहीं सोचो कि मैं कर नहीं सकता, कैसे करूँगा, मैं चल नहीं सकता, मैं हार जाऊँगा, मेरा पुरुषार्थ बहुत ढीला है। तो बाबा कहते ये संकल्प आना मीन्स माया का आह्वान करना। उस दिन भी बाबा ने क्या बोला मुरली में, कई बच्चे बाबा को कहते बाबा माया को कहो ना कि माया मत आवे। बाबा कहते मैं माया को ऑर्डर करता हूँ तुम जाओ जोर से मेरे बच्चों से लड़ो, मेरे बच्चों को देखो कितने बड़े पहलवान हैं। तो बाबा कहते बच्चों को शक्तिशाली बनना है, सर्वशक्तिमान बनना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप है। तो बाबा को ये अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे कहें बाबा हम थक गए हैं, बाबा हम क्या करें। तो मैं आपको बताती बाबा के सामने जब मुरली चलती थी ना, कभी कभी होता ना थके हुए होते हैं तो बाबा को अच्छा कोई उबासी आ जाएगी ना, बाबा कहते देखो देखो माया आई इसको ना थका रही है। तो बाबा कहते थे एक्टिव होकर के बैठो। फिर बाबा जब मुरली चलाते थे ना, तो मुरली चलाते चलाते कभी कभी बाबा हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चलाते थे और चलाते चलाते कभी बाबा खड़े हो जाते थे, खड़े होकर के दृष्टि देते पूरे हॉल के अंदर एक एक को दृष्टि देते। जैसे बाबा ने दृष्टि दिया सबके सब फरिश्ते बन करके अव्यक्त रास करने लगते थे। तो बाबा कहते हैं ये बच्चे ना कहें कि हमने बाबा को नहीं देखा। अच्छा आप में से बाबा को किसने देखा, साकार बाबा को देखा है, अव्यक्त बाबा को देखा है ना सबने। अच्छा साकार बाबा को नहीं देखा क्या, नहीं देखा, देखा है ना, कब देखा, अनुभव किया। अरे बाबा तो रोज आपके पास आते हैं पता है। बाबा कहते मैं बच्चों का हाथ पकड़ के चलाता हूँ, बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखता हूँ। बाबा कहते मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरे बच्चे तैयार नहीं होते। तो बाबा तो साथ है, बाबा साथ में है, बाबा हाथ हिला करके बच्चों को प्यार करते हैं, बाबा अपनी गोदी में बिठाते हैं, बाबा बच्चों को खिलाते हैं। बाबा अभी वठी में भी अनुभव करेंगे, साकार बाबा आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कौन बच्चे क्या कर रहे हैं, और फिर बाबा वरदान भी देंगे। तो बाप को बताएं तो जहाँ पर आपकी वठी चल रही है इस स्थान की विशेषता क्या है। आपके पास तो वहाँ कितने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर हैं, गुजरात में हैं, बड़े बड़े हैं, वहाँ पर बठियाँ करते हैं, और आपके पास बठ्ठी कराने वाले कितनी टीचर्स बहनें आती रहती हैं, फिर भी आप यहाँ बठ्ठी करने के लिए क्यों आए हैं, क्यों आए हैं। बाबा का स्थान है, अपना स्थान नहीं है, बोलो अपने घर आए, अपने घर आए ना, ठीक है। वैसे तो आप सभी का अपना ही घर है, तो लेकिन जहाँ पर आपका देखो वहाँ तो हॉल बहुत सुंदर बने हुए हैं, एसी लगा होगा, चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर अच्छे से बने होंगे, लेकिन यहाँ जो बाबा का घर है वो बाबा का घर बाबा ने ऐसा बनाया है, साधारण के रीति से साधारण भी है लेकिन पावरफुल भी है, अनुभव भी कराता है। ये जो हॉल जहाँ आप बैठे हैं ये बाबा के टाइम पर हॉल नहीं था, ये पहाड़ी है, ये बाबा के टाइम पर पहाड़ी थी और यहाँ पर बाबा बैठ के तपस्या करते थे। बाबा का आपने एक फोटो देखा होगा ना, पहाड़ी पर ऐसे बाबा तपस्या कर रहे हैं। वो बाबा यहाँ इधर कॉर्नर में एक वहाँ बैठते थे, तो बाबा तपस्या करते थे। फिर बाबा बच्चों को बुलाते थे, दादियों को कहते थे आओ आओ सब आओ। फिर गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे। तो फिर उस समय क्या होता था, सब दौड़ दौड़ करके आ जाते थे। फिर बाबा सबको कहते थे सब बैठ के योग तपस्या करो, सेमिनार में योग तपस्या करो। फिर बाबा के टाइम पर जब बाबा अव्यक्त हुए ना, तो सब अव्यक्त बाबा पहले बाबा के कमरे में आते थे, फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में आने लगे। फिर एक बार बहुत से भाई बहने आ गए थे, याद होगा किसी को, तो उस समय बाबा का आने का प्रोग्राम जो इस आंगन में रखा था, बड़ी स्टेज बनाई थी, कोई छतों पर बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, चारों तरफ फरिश्ते। दो टाइम खाना देते थे, सुबह का नाश्ता 10 और 11 के बीच में, नाश्ता दोपहर का खाना इकट्ठा 10 और 11 के बीच में, और शाम का भोजन होता था 4 से 6 के बीच में, और 6 बजे बाबा के लिए सब बैठ जाते थे। उन दिनों तो 6 बजे बाबा के लिए बाबा का रथ आ जाता था। फिर बाबा मुरली के अंदर कहते आगे चल के बड़े बहुत बच्चे आएंगे। फिर ये फिर प्लान किया गया कि हॉल बनाया जाए, तो इस पहाड़ी को तोड़ करके ये हॉल बना है 1975 में। तो 1975 से अव्यक्त बाप दादा यहाँ आने लगे। तो अव्यक्त बाप दादा यहाँ बैठते थे ये कॉर्नर में, और हम सब बाबा के बच्चे बाबा के आसपास बैठे हुए हैं। कोई कुर्सी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सब पट पर ही बैठते थे, जमीन पे बैठते थे। और बाबा के टाइम पर जो भी पार्टियाँ आती थी ना, तो सब जमीन पे सोते थे। और बाबा कहते थे ये सब कौन है, मेरे पट राजे और पट रानियाँ। और अभी क्या मिलता है, हैं अभी तो पलंग मिलता है ना, तभी ऐसे तो नहीं कहेंगे क्या है, हैं अभी कहेंगे बाप के दिल तख्त नशीन बच्चे है ना। और बाबा कहते मेरे बच्चों को हर प्रकार से सुख हो, हर तरह से सुखी रहे। तो फिर अव्यक्त बाबा यहाँ आते थे और एक एक से मिलते थे, सबको वरदान देते थे। तो इस हॉल में जो बट्टी है, इसके दो अनुभव है। एक तो साकार बाबा की तपस्वी पहाड़ी है, और दूसरा जो है अव्यक्त बाप दादा का ये वरदानों से भरपूर हॉल है। इसलिए इस भट्टी में जब भी आप बैठते हैं ना, वो अनुभव होते हैं, वरदानों के अनुभव होते हैं, बाबा के साथ का अनुभव होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सुस्ती नहीं करनी है, बाबा जो हमें कहते हैं वैसा ही हमको चलना है। ठीक है ना, सब ठीक है, आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रहने में, खाने में है? तो आपको कोई भी बात हो, तो कुछ भी हो, तो अपने टीचर बहन को बताना, वो हमें बता देंगे। वैसे तो बाबा आपकी बहुत खातरी करेंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत के साथ साथ एक बात का ध्यान देना है कि अमृत वेले योग के बाद कई भाई बहने समझते हैं कि अभी तो तैयार हैं तो नक्की लेक की तरफ घूमने चले जाते हैं। तो नक्की लेक की तरफ सुबह सुबह नहीं जाना, ना योग से पहले ना योग के बाद। 6 बजे जाओ, क्योंकि जब रोशनी हो जाती है क्लास के बाद जाओ। अकेले जाते हैं ना, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो अभी आपको मालूम है कि हम जंगल में रहते हैं, बाबा ने जंगल को मंगल बनाया, तो कौन आ जाएगा आपका दर्शन करने, योगियों का भालू आएगा है? देखा है कभी भालू, देखना नहीं आएगा है? आप योगियों को देख के क्यों आएगा? लेकिन जो लापरवाह हो जाएगा ना, कहेगा इससे बढ़ के और कहाँ मिलेगा, खुश हो जाएगा कि इतने अच्छे योगी मिले हैं, लेकिन आता नहीं है। कभी कभी वो होता है, ऐसे नहीं आता, आपके ध्यान पर डरना नहीं है, कभी नहीं आता भालू। कभी कभी वो पानी पीने के लिए, क्योंकि गर्मी होती ना, पानी पीने के लिए यहाँ नहीं आता है, उधर नक्की लेके उस साइड एक किनारे से निकल करके पानी पीने के लिए आता है। तो कभी कभी अकेले जा रहे होते तो डर तो कुछ नहीं है, फिर भी बाबा कहते अपना काम है अपनी सेफ्टी रखना। बाबा कहते तन की भी संभाल करो, मन की भी संभाल करो। इसलिए अकेले अकेले अंधेरे में नहीं जाना, रात को अंधेरे में जाना है ना, सुबह के टाइम अंधेरे में जाना है। बाकी मुरली क्लास के बाद थोड़ा है तो आधा घंटा घूम के आए, वो कोई बात नहीं है, वो तो रोशनी का टाइम होता है, उस समय वो आते ही नहीं है। कभी कभी गर्मी बहुत हो गई ना, तो इसलिए उनको भी तो प्यास लगती है ना, तो इसलिए वो अपने ही भोजन और प्यास के लिए आते हैं, ना कि किसी मनुष्यों के पास। लेकिन बाबा कहते फिर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज फिर आपको बाबा के घर से मुख मीठा कराएंगे, क्योंकि आपको मालूम है बाबा के पास आते थे बच्चे, तो बाबा सब बच्चों को अपने पास बुला करके टोली खिलाते थे। कभी कभी दादी के टाइम पर भी आंगन में खड़े होते थे, दादी भी आंगन में बच्चों को मिलती थी, तो फिर कहते थे तैयार होकर के कहते थे दादी से मिलना है। तो हम उनको पूछते दादी से तो भी मिले, दादी ने आपको रिसीव किया, कहते हमने टोली कब खाई है। टोली क्या है? टोली क्या है? हमारा क्या बोलो है, जन्म सिद्ध अधिकार है, है ना, जन्म सिद्ध अधिकार। सेंटर पर रोज टोली मिलती है क्लास में? नहीं ना, कभी कभी जब कोई बड़ी बहन आएगी मुरली क्लास के बाद, रोज तो टोली नहीं मिलती, जब कोई बड़ी बहन आएगी कोई प्रोग्राम होगा तब मिलेगी। और बाबा के टाइम का ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पांडव भवन के अंदर, मुरली क्लास के बाद सबको रोज टोली मिलती है। तो टोली का अर्थ है, बाबा कहते टोली मीन स्वीट, बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं, और मीठे बने तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार से टोली देते थे। तो आज आपका स्वागत करते हुए आप सबको भी बाबा के घर से, बाबा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, और आप सबको टोली देंगे। टोली दे करके फिर भोजन करने के लिए जाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, भाइयों को बुलाएंगे। और दूसरा एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप किससे बात करते, नज़दीक नहीं, थोड़ा दूरी से, वैसे कुछ है नहीं, फिर भी कभी कभी होता है ना, आजकल बाहर दुनिया में एनवायरनमेंट का चलता है, थोड़ा सा ऐसा आता है, अपना मास्क लगा के रखो, नज़दीक नहीं, बाकी थोड़ा दूरी बना के रखें। लेकिन अब टोली लेने के लिए आएंगे ना, हाथ लंबा करना है, हाथ लंबा करना और टोली लेकर के पहले हम भाइयों को बुलाएंगे, यहाँ से टोली लेके वहाँ जाएंगे। माताएं कोई भी नहीं उठेंगी जब तक हम नहीं बुलाएंगे, तब तक माताएं बैठी रहेंगी टोली लेने के लिए, पहले हम भाइयों को बुलाएंगे। ठीक है, सब खुश मजे में, वैसे ही मजे में रहते हैं यहाँ, जब आते हैं तो कितनी सेवा करते हैं। आज सबने खुश हो गए, आज आपने क्या खिलाया, गोल गोल है, गोला खिलाया ना, बर्फ का गोला खिलाया है। तो बाबा कहते विश्व के गोले पर बैठ जाओ है, विश्व के गोले पर बैठ के सारे विश्व के अंदर साकाश दो। गोला बर्फ का गोला था, उसके ऊपर लाल लाल वो रस डाला, फिर वो क्या डाला है, सुपर ड्राई फ्रूट डाला, फिर साथ में है वो क्रीम डाला है, बहुत कुछ डाला था ना। तो अभी ये भी प्रैक्टिस करना, हम सब विश्व के गोले पर फरिश्ते बैठे हैं, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन भेजने, वो लाल लाल हो जाएंगे वाइब्रेशन, ठीक है, सारे वाइब्रेशन भेजने, और सबको ताकत के और शक्तिशाली वाइब्रेशन। आप सभी तो बहुत ही प्यारे और टोलियां बनाने में बहुत होशियार, बहुत अच्छी अच्छी टोली बनाते हैं। दीदी तो हर बार भेजती रहती है, कभी कुछ भेजती रहती है, और अभी भी लेकर के आए टोली, तो कितना प्यार से बनाते हैं। तो उसके लिए भी आप सबको, दीदी को खास करके, भारती दीदी को और सब बहनों को बहुत बहुत थैंक्स है, और बहुत बहुत प्यार से आप सेवा कर दें, इसलिए बाबा भी सेवा का रिटर्न देते हैं। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स है। ओम शांति।